ये वाणी चल रही थी 18 अगस्त सन 1965 की, दूसरे पेज के मध्यांत में। बोला ये भी समझाया है, पहले सतो प्रधान भक्ति होती है फिर तमो प्रधान भक्ति होती है, ड्रामा अनुसार। वो तो बड़ा ड्रामा की बात बताई, वहां होती है भक्ति और संगम युग में होता है ज्ञान। वहां जैसे जैसे भक्ति सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, पहले सतो प्रधान फिर सतो सामान्य फिर रजो फिर तमो, ऐसे ही यहाँ ज्ञान भी पहले सतो प्रधान फिर सतो सामान्य फिर रजो फिर तमो। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, चाहे चैतन्य वस्तु हो चाहे जड़ वस्तु हो। तो बताया ये ड्रामा में नूद है हर चीज का चार अवस्थाओं से पसार होना, और ड्रामा के राज को चढ़ती कला उतरती कला इन बातों को कोई जानता नहीं है। बाप इन बातों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, क्या न तो कोई जानता है और न कोई बाद में समझा सकता है। ऐसे भी नहीं कि बाप ने एक बार सुनाई दिया फिर बाद में कोई समझता रहे, वो भी नहीं। वो तब ही समझ सकता है ड्रामा के राज को, इन बातों को, जब बाप सन्मुख आकर के एक एक को समझे। सारी दुनिया को पढ़ना है, नंबर वार। पूरी पढ़ाई तो सब पढ़ न सके, क्या ईश्वर जो आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पूरी तो सब कोई पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि पूरा निश्चय परमात्मा के ऊपर कोई को बैठता नहीं है। जिनको बैठता है वो स्वर्ग में आ जाते हैं। पढ़ेंगे वही जो कल पहले पढ़े हैं। तो बाप सावधानी करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम पहले कितने ऊंचे थे, अभी हम गिरे हैं, पहले हम चढ़े हुए थे ऊंची चाढ़ी में, अब गिरे हैं। अभी बाप कहते हैं पति से पावन बन फिर गोल्डन एज में तुमको जाना है। पति तो हो, पति से पावन बनना है, पावन बन करके फिर गोल्डन एज में जाना है। पावन बनेंगे तो गोल्डन एज में जाएंगे, पतित रहेंगे तो फिर कहाँ आवेंगे? फिर इसी पतित दुनिया में आवेंगे। तो अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना पुरुषार्थ कर लो अपनी आत्मा को पावन बनाने का उतना अच्छी दुनिया में तुम आ जाएंगे। याद के बल से अवर हेल्दी और ज्ञान के बल से अवर वेल्दी बनना है, क्या कोई ज्यादा मेहनत नहीं है? वहां तो दुनिया में धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन खून पसीना एक कर देते हैं, और यहाँ तो बाप बहुत सहज साधन बताते हैं कि बाप जो आकर के ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान अगर तुम अपने जीवन में जितना जितना धारण करोगे उतना तुम अनेक जन्मों के लिए वेल्दी बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। ये ड्रामा की शूटिंग हो रही है, जब जब जितना जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना उतना वहां साहूकार और राजा बनते रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात है, पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, क्या ज्ञान तो धारण करेंगे लेकिन अगर रावण की तरह ज्ञान धारण कर लिया, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं और रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं, प्रकांड विद्वान तो दोनों हैं, लेकिन वो ज्ञान की धारणा किसके अंदर है? ब्रह्मा के अंदर ज्ञान की धारणा, और रावण के अंदर जीवन में ज्ञान की अपने जीवन में धारणा नहीं थी, क्या काम फिर भी चोरी और डकैती की करता था, धमपटाई की करता था। तो ऐसी जो धारणा अगर है ज्ञान की तो प्राप्ति नहीं होगी। पवित्रता का इसलिए ऑर्डिनेंस निकाला है पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। अमर तो बनेंगे, देवताएं अमर होते हैं, देवताएं मरते नहीं हैं, क्योंकि वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। जो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं उनको मरने वाला नहीं कहा जाता। मरने वाला उसको कहा जाता है जो हिलकोरा खा के जबरदस्ती शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी जबरियन मरता है, परिस्थितियां उसको मारती है, शरीर छोड़वाती है। कर्म बंधन ऐसे हैं जो जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हारा वास्तव में विनाश नहीं है क्या? तुम्हारे शरीर का भी विनाश नहीं होगा? शरीर भी तुम्हारा रेजुविनेट होगा। तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, किसी चीज का विनाश नहीं होना है। बाकी सब विनाश हो जाते हैं, सब का हिसाब किताब चुक तो हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं अभी पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जितना जितना पवित्र बनेंगे उतना उतना पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पूरे पवित्र बनेंगे 100% तो 100% पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजा खा करके घर वापस जावेंगे। जितनी जितनी सजा खावेंगे उतना उतना पद नीचा होता जाएगा। तो देखो कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है पवित्र बनने के लिए। तुम समझते भी हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है क्या? विनाश की धमकी दे दी, ये अंदर से समझते भी हो कि अभी तो एटम बम बन चुके हैं, दुनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, पता नहीं कब क्या शुरू हो जाए, बालू के ढेर पर दुनिया खड़ी हुई है। तो समझते भी हो कि विनाश सामने खड़ा है, इनसे पहले हमको मजबूत होकर के जाना है। विनाश का जो मुकाबला कर सकेंगे वो ही मुकाबला कर सकेंगे जिनमें बाप की याद करते करते इतनी विल पावर आ जाएगी। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा तुमको सुनाते हैं, तो वो पॉइंट्स सुननी चाहिए ना, क्लास मिस नहीं करना चाहिए क्या? ऊंचे से ऊंचा सुप्रीम टीचर इस दुनिया में आया हुआ है तो उसकी क्लास तो मिस नहीं, पता नहीं कौन से दिन हमारी कब किस्मत खुतुल खुल जाए और कौन सा पॉइंट हमको विशेष लागू हो जाए। 18-8-65 की वाणी का तीसरा पेज, अगर वो पॉइंट्स सुनेंगे ही नहीं, क्लास करेंगे ही नहीं, तो वो माला में जा नहीं सकेंगे। क्या कहा? माला में जाने वालों की सिफ्त क्या बताई? माला तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्मों में घुमाते हैं, लेकिन माला घुमाने वाले इस बात को जानते नहीं है कि वो माला के मणके दुनिया की चुनी हुई कोई श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार है, जिनको हर धर्म के लोग सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं। जरूर उन आत्माओं ने कोई विशेष कार्य किया होगा। क्या कार्य किया होगा? परमात्मा ने जो आकर के पढ़ाई पढ़ी होगी वो पढ़ाई को ध्यान पूर्वक रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ा होगा, इसलिए बोला अगर नहीं सुनेंगे तो माला में नहीं आ सकेंगे। अगर ईश्वरीय पढ़ाई में लापरवाही की तो माला में नहीं आ सकेंगे। माला में भी नंबर वन जाना चाहिए क्या? मालाएं भी किस्म किस्म की है। नंबर वन माला कौन सी है? हैं? 8 की है नंबर वन माला, उसके बाद है 108 की, उसके बाद है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, वो भी तो माला है जो सहयोगी बनते हैं। फिर है 16108 और थर्ड क्लास माला है। तो कौन सी माला में आना चाहिए? हैं? फर्स्ट क्लास माला में आना चाहिए, नंबर वन जाना है, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। क्या बाप की तमन्ना क्या है? बाप की बच्चों से तमन्ना है कि बच्चे पूरा नंबर माला में ले, अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छी रीति लग पड़ते हैं तो बाबा रजिस्टर भी मांगते हैं। बाबा सबको खबरदार करते हैं कि पढ़ाई में रेगुलर हैं और रजिस्टर किस लिए मांगते हैं कि रोज की पढ़ाई में हाजिरी इनकी पूरी है। सबको खबरदार करते हैं पढ़ना जरूर है। इस सब पढ़ाई पढ़ने में कोई कारण नहीं दे सकता। क्या क्या कारण नहीं दे सकता है कि हम तो बांधे लिए हैं, हमको माँ बाप परमिशन नहीं देते हैं या हमको फुर्सत नहीं मिलती है। ये पढ़ाई तो ऐसी है जो 24 घंटे में कभी भी कोई टाइम निकाल करके बाबा की मुरली पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। टाइम तो बच्चों को बहुत है। जो बाबा का परिचय पाने वाले बच्चे हैं उनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको टाइम पढ़ाई पढ़ने का न हो। 8 घंटा भले गवर्नमेंट की नौकरी करो, क्या करो, छूट दे दी। गवर्नमेंट की नौकरी किस लिए करो? पेट पूजा के लिए गवर्नमेंट की नौकरी करो। फिर जो आत्मा का पेट है, मन बुद्धि भी तो पेट है, वो तो 84 जन्मों का पेट है, है? और ये स्थूल शरीर है इसका तो इसे 1 जन्म का पेट है। इसे 1 जन्म की पेट पूर्ति के लिए 8 घंटा दे रहे हो तो 84 जन्मों की पेट पूर्ति के लिए आधा 1 घंटा नहीं दे सकते। तो कहते हैं 8 घंटा भल गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में तुम अपनी मेहनत करो। कौन सी मेहनत? बाप को याद करने की मेहनत, बाप के ज्ञान को सुनने और सुनाने की मेहनत, और अपने जीवन में उन ज्ञान की बातों को धारण करने की। तो ख्याल करना चाहिए सारे दिन में हम कितना बाप की सर्विस में रहे। इसका पोता मिल रोज निकालना चाहिए। क्या अपने स्वार्थ की सेवा में कितने रहे, रथ के पोषण में कितने रहे, और इस रथ के जो संबंधी हैं उन संबंधियों के पोषण में हमने कितना टाइम लगाया है? और फिर बाप की याद में हम कितने रहे, सेवा में कितने रहे, बाबा की याद में कितना समय रहे। कोई बच्चों का चार्ट आता है, कोई का नहीं आता है। जिन बच्चों का चार्ट आता है वो भी सदैव तो रहे, वो भी सदैव नहीं रहता। ऐसे नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। क्या ढेर सारे बच्चे हैं, सब अपना चार्ट भेजते हैं, अपना पोता मिल भेजते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है बाबा एक एक का बैठ देखेगा। फिर जब देखेगा नहीं तो बाबा को भेजने से क्या फायदा है? बाबा तो कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। तो साकार में तो जितने भी हजारों हजार बच्चे हैं उनका पोता मेल एक बैठ करके नहीं देख सकता, लेकिन जो निराकार है उसके पास तो लिखते समय ही सारा पोता मेल पहुंच जाता है। उसकी टीवी से किसी का पोता मेल छुप नहीं सकता। तो कहा ये सेंटर की ब्राह्मणी का काम है क्या एक एक का पोता मेल बैठ करके देखना। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार तो है ना, जैसे नदियां सब एक जैसी नहीं होती है। कोई नदी तो बड़ी गहरी होती है, कोई नदी बहुत उथली होती है। अगर उनमें कीचड़ा गिरता है तो सारा कीचड़ा किनारों में फेंक देती है। कोई नदी इतनी गहरी होती है कि सारा कचरा अपने में समा करके और अंत में जाकर के सागर में डाल देती है। तो नंबरवार नदियां हैं जैसे, वैसे ब्राह्मणियां भी नंबरवार है। गोल्डन एज में तो कोई पहुंचे नहीं है, ब्राह्मणियां भी सब कैसी हैं? कोई रजो प्रधान है, कोई तमो प्रधान है, कोई तो अपनी फर्ज पूरा समझ करके पोता मिल को ध्यान से देखती है, कोई ऐसे ही फाड़ के फेंक देती है। तो उसमें आज उन समय पड़ा हुआ है। कोई तो ऐसे हैं जो और ही जास्ती आयरन एज में चले गए, क्या ज्ञान में आने के बाद गोल्डन एज में जाना चाहिए या आयरन एज में जाना चाहिए? जाना तो चाहिए गोल्डन एज में, लेकिन इतनी कदर नहीं है ज्ञान की कि कौन सुना रहा है, कौन हमको रास्ता बता रहा है, तो ध्यान नहीं देते, और ध्यान न देने के कारण गफलत करते हैं। गफलत करने से भूलें होती हैं, भूलें होने से सौ गुना बोझ चढ़ता जाता है। दुनिया भी लोग वो ही पाप कर्म करेंगे तो उनके ऊपर एक गुना बोझ चढ़ेगा, और ज्ञान में चल करके एक बार अंजाम करके कि हमने बाप को पहचान लिया और फिर वो ही पाप कर्म करेंगे तो सौ गुना बोझ चढ़ता जाता है। तो सीमत पर न चलने के कारण फिर थिरक पड़ते हैं, आयरन एज में चले जाते हैं। ऐसे आयरन एज में जाने वालों को फिर कोई मान नहीं देता। क्या दुनिया भी मान नहीं देती, ब्राह्मण परिवार वाले भी मान नहीं देते, कोई मान नहीं देता है, कोई भी उनको अपने पास पसंद नहीं करता है। तुम बच्चों को तो कोई भी दुनियावी बात नहीं करनी है, अलौकिक जीवन में आए हैं, नया जीवन हुआ है तो दुनियावी बातें तो खत्म, आप मुए मर गई दुनिया, बाहर की दुनिया से हमारा नाता कट हो गया बुद्धि का, दुनियावी बातें करनी नहीं है। कोई प्रकार की झरमुई झगमुई सुनावे तो समझोगी ये हमारा दुश्मन है। क्या ये झरमुई झगमुई की बातें सुना करके हमको गड्ढे में ले जाना चाहता है, गिराने वाला है। कोई प्रकार की फालतू बातें नहीं करनी है। देखो मम्मा सूक्ष्म बतन में सर्विस कर रही है, कहाँ सूक्ष्म बतन में सर्विस कर रही है, इनके लिए तुमको कुछ करना नहीं है। किनके लिए? मम्मा के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, भोगों को नहीं लगाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो भोग लगाते हैं, हैं? क्यों लगाते हैं जब बाबा ने कहा इनके लिए कुछ करना नहीं है, हैं? बाबा ने तो डायरेक्शन दिया मुरली में कि जो मम्मा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म बतन में गई है उसके लिए तुमको कुछ करने की दरकार नहीं है। मम्मा अपना सर्विस अपने टाइम पर करती रहती है, अपन को देखना है कि हम कहां तक पुरुषार्थ में चढ़े। गुरु शिखर है ना, यादगार क्या है? गुरु शिखर की यादगार है, इसमें भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है। क्या गुरु शिखर किसकी यादगार है? ऐसे बाप की यादगार है जो बाप के रूप में भी कार्य करता है, टीचर के रूप में भी कार्य करता है, और गुरु के रूप में भी कार्य करता है। और कैसा गुरु है? शिखर माना चोटी, चोटी का गुरु है। और जो गुरु दुनिया में हुए हैं वो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुमको मिले, और ये गुरु सबसे ऊंचा गुरु मिला है, इसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तो तुमको ऊपर जाना है गुरु शिखर पर, ये सब ज्ञान की बातें। ऊपर जाने का मतलब कोई ऊंचे पहाड़ पर नहीं जाना है, कहां जाना है? ऊंची स्टेज में जाना है, पहाड़ आदि की बात नहीं, सब प्रकार की कठिनाइयों से पार चले जाना है। कहते ना पहाड़ जैसी मुसीबत हमारे सामने आ गई, लेकिन आत्म की स्थिति अगर ऊंची है तो कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए वो परिस्थिति छोटी दिखाई देगी। जब हमारी आत्म की स्थिति ऊंची होती है तो दुनिया भी बातें सब छोटी दिखाई पड़ती है। जब हम आत्मा की शान में नहीं रहते तो बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पार जाना है, इन बातों को कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं तुम अब तमो प्रधान बन गए हो इसलिए इन बातों की गहराई में नहीं जाते हो, अब फिर से तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत हैं जिनको ये निश्चय भी नहीं है। क्या कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते? सुप्रीम सोल बाप साकार तन में आकर के हमारा बाबा बन करके पढ़ा रहा है, ये बहुतों को निश्चय नहीं है। बल सेंटर्स पर कुछ न कुछ वार्तालाप भी करते हैं तो सबको देखा दूनी वो वार्तालाप करते रहते हैं, अंदर में निश्चय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योग पूरा नहीं है। दूसरों को समझाते तो हैं, तो जिनको समझाते हैं उनका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जिनको अंदर से निश्चय नहीं है लेकिन दूसरों को समझाते हैं तो उनका अपना कल्याण नहीं हो पाता है। क्यों? दूसरों है? हाँ, अंदर से निश्चय नहीं है, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं तो वहां जाकर के टीचर तो बन जावेंगे नई दुनिया में, लेकिन बाप जो बनाने आए हैं नई दुनिया का मालिक, वो मालिक नहीं बन सकेंगे। न तो राजा महाराजा बन सकेंगे, न रानी महारानी बन सकेंगे, और न राज्यधारी बन सकेंगे। क्या लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक होते हैं, वो अकेले थोड़े विश्व का राज्य चलाते हैं, उनके साथ राज्यधारी अधिकारी भी तो होते हैं नंबरवार, वो भी नहीं बन सकेंगे। अगर सिर्फ दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने में लगे रहेंगे, खुद वो धारणा नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि टीचर हमारा कल्याण करती है, टीचर हमको पढ़ाई पढ़ाती है, ब्राह्मणी पढ़ाई पढ़ाती है, तो ये बुद्धि में किसी के बैठ जाएगी टीचर हमारा कल्याण करती है। नहीं, तुम अपना कल्याण अपने आप करते हो, अपने पुरुषार्थ से करते हो। वो तो अपने भाग्य अनुसार राज्य को समझ लेते हैं तो राजा ही पा जाते हैं, क्योंकि राज को समझा है। ऐसे भी बहुत हैं जो ब्राह्मण से भी तीखे चले जाते हैं। क्या कोई जरूरी नहीं है कि जो बाबा ने टीचर्स बनाई हैं, ब्राह्मणी बनाई हैं, समर्पित कन्याएं हैं, वो ही टीचर हैं? हो सकता है स्टूडेंट अगर अच्छी पढ़ाई पढ़े, रेगुलर पढ़ाई पढ़े, पंक्चुअल होकर के पढ़ाई पढ़े, तो उनसे कोई स्टूडेंट भी तीखा चला जाए भी? कोई कोई ब्राह्मणी को तो बहुत देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान को इतना त्यागना है जो देह भी याद ना आए। सन्यासियों में भी कोई कोई विरले होते हैं जो ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और वातावरण में चारों ओर सन्नाटा हो जाता है, इतनी एकाग्रता होती है दुनिया भी सन्यासियों में भी। तो हम तो बेहद के सन्यासी हैं, वो तो हद का घर से छोड़ते हैं, और हम तो ये बेहद की सारी दुनिया का सन्यास करते हैं बुद्धि से। क्या इस सारी दुनिया में हमारा बुद्धि योग ठहरता नहीं है? कहाँ ठहरता है? बाप की याद में हमारा बुद्धि योग ठहरता है, बाप की सुनाई हुई बातों में हमारा बुद्धि योग ठहरता है, बाप ने जो कुछ हमको गुण रतन दिए हैं, शक्तियां दी हैं, उनमें हम अपना विचरण करते हैं। वो सन्यासी गृहस्थियों के यहाँ भोजन करते हैं तो गृहस्थियों के यहाँ उनको जन्म लेना पड़ता है। क्या जिसका खाएंगे उसके यहाँ बजाना भी पड़ेगा? भ्रष्टाचारी जो पहले थे गृह धर्म में, वो फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में जाते हैं। क्या जंगल में जाकर के श्रेष्ठाचारी कोई बन सकते हैं? क्या ये माया का राज्य है? पाम पेंट शो बहुत दिखाते हैं कि जंगल में जाने से पवित्र बन जाएंगे। अरे जंगल में तो शरीर को ले गए, मन बुद्धि पवित्र बन जाएगी क्या? मन बुद्धि से तो फिर भी वही घर का सादा याद आता रहता है। ये चक्कर कैसे फिरता है उन सन्यासियों को भी समझ नहीं है। इनको तुमने समझा है, बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी बाबा को देखा भी नहीं है। बहुत सी बांधेली बच्चियां हैं जिन्होंने भट्टी नहीं की है, सिर्फ बाप का संदेश लिया है, बुद्धि में निश्चय बैठ गया है, बांधेली होने के कारण उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। टीवी में बाबा का चित्र देख लिया है, अगर चित्र देख लिया तो उनकी बुद्धि में चित्र से ही निश्चय बैठ जाता है कि हाँ बाबा ने जो वाणी सुनाई है वो ये चित्र एक्यूरेट है। और एक्यूरेट याद करती रहती है। कोई कोई ऐसे हैं कि सप्ताह कोर्स भी कर लेंगे, बेसिक कोर्स भी कर लेंगे, एडवांस कोर्स भी कर लेंगे, भट्टी भी कर लेंगे, और फिर बाद में वापस बाबा से मिलके भी जब वापस घर जावेंगे तो कहते हैं हमें बाबा का चेहरा ही नहीं याद आता। इतना अंतर क्यों पड़ता है, इसका कारण क्या है? कि फाउंडेशन से ही उनका फाउंडेशन पक्का नहीं पड़ा है। तो बोला बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है तो भी अच्छी याद करती रहती हैं, तो उनको ऊंच पद मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। सारा कर्म का खेल है क्या? भक्ति मार्ग में भी यही बात सिखाते हैं क्या? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा कर ही सोता सफल चाखा। कर्म की प्रधानता है, ईश्वर आकर के कर्म करना सिखाते हैं, ये भी बताते हैं कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो अच्छे कर्म में लग जाते हैं उनका भाग्य बुलंद होता जाता है। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, तुम जानते हो इस देह में रहते पति से पावन सत्व प्रधान बनना है। क्या कहा? देह में रहते बनना है या देह छोड़ करके बनना है? मम्मा बाबा की तरह है, इस देह में रहते पतित से पावन बनना है। ज्यादा ऊंचे कौन बनेंगे? ऊंच पद किन का होगा? जो देह में रहते पतित से पावन बनेंगे उनका ऊंच पद होगा, या देह छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पतित से पावन बनेंगे उनका ऊंच पद होगा? जो अपनी देह में रहते इसी संसार में इसी शरीर से प्राप्ति करके दिखाए, आत्मा भी पावन बने और शरीर भी पावन बन जाए, टाइम लगता है पावन बनने में, इसमें जल्दी करने की कोई बात नहीं है। ड्रामा तो धीमे धीमे चलता है, जू मिसल आतर बेला नहीं होनी चाहिए। जब तक ये दुनिया है क्या? जब तक ये दुनिया है ये पढ़ाई तब तक पढ़ना है। क्या क्या कहा? कितनी लंबी पढ़ाई है? जब तक ये दुनिया है। कब तक है ये दुनिया है? अरे ये दुनिया कब तक है? हाँ, आप मुए मर गई दुनिया। इस दुनिया से अगर हम खुद मर गए, हमारा कुछ इस दुनिया से लेना देना नहीं, वास्ता नहीं। क्या? अगर वास्ता है भी तो दुनिया में जो आत्माएं हैं उन आत्माओं का कल्याण हो जाए, बस इतना हमारा वास्ता है, और हमें कुछ इस दुनिया से लेना देना नहीं है। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहां जीना है पढ़ना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जावे। तो जीना कहां है? हैं? जीना है देवन में? नहीं, देवान में जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमको ज्ञान पीने की दरकार जरूर पड़ेगी। जब हम पक्के देह अभिमानी आत्मा अभिमानी बन जावेंगे, देह अभिमान छोड़ देंगे, तो फिर हमें ज्ञान की भी दरकार नहीं रहेगी। फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो कर्म इंद्रियों का बंधन जो अभी हमको खींच लेता है पाप कर्म की ओर, फिर हमको पाप कर्म की ओर खींच नहीं सकेगा। इस देह से दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए, देह से भी ममत्व निकल जाए और इस दुनिया से भी ममत्व निकल जाए। लेकिन होता क्या है, ज्ञान में चलने वाले चल तो रहे हैं बहुत सालों से, 50-50-60 साल भी हो गए, लेकिन देह और देह के संबंध और ज्यादा बढ़ते जाते हैं या छूट रहे हैं? क्या होता जाता है, हैं? और ज्यादा बढ़ रहे हैं? सबके बढ़ रहे होंगे या नंबरवार? नंबरवार होंगे। कोई तो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे, हैं? कोई तो होंगे कि नहीं? जो होंगे वो जरूर है। जो आखिरी श्लोक है कौन सा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, उनके जीवन में ये बात जरूर देखने में आ रही होगी कि उनका इस दुनिया से ममत्व टूटा होगा। तो मेहनत है राजा राजा रानी बनने में। क्या वो जो नौकरी के लिए संघर्ष होता है, स्पर्धा होती है, कितने हजारों हजार फार्म भरे जाते हैं और फिर थोड़े से लोग लिए जाते हैं, तो कितनी स्पर्धा भारी हो जाती है। तो यहाँ तो जन्म जन्मांतर की राजाई मिलनी है, बहुत ऊंची पढ़ाई है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए राजा रानी बनने का बात है। इस देह से दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल मात्र निकल जाए, जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, कायदे अनुसार पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ने के ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के जो नियम बताए हैं, उन नियमों के अनुकूल जो पढ़ाई पढ़ते हैं, वो ही बाप के दिल रूपी तख्त पर चढ़ते हैं। क्या नियम पूर्वक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे नियम ईश्वरीय नियम बनाए हैं उन नियमों पर ध्यान नहीं देंगे, तो बाप के दिल तख्त पर नहीं चढ़ सकेंगे। अंदर में समझते हैं ये कहां तक मददगार है। जरूर जो बाप के दिल तख्त पर चढ़े हुए होंगे वो बाप के बहुत मददगार होंगे। मददगार होंगे तो जरूर अपना तन, अपना मन, अपना धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाते होंगे। दूसरे भी समझेंगे कि ये जितने मददगार हैं उतने मददगार हम नहीं बन पा रहे। तो ये समझ की बात है। बेहद का बाप एक एक की रूहानियत की स्टेज की अवस्था देख करके प्यार करेंगे। क्या बाप भी सबको एक जैसा प्यार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? दुनिया में भी कोई बाप होते हैं तो जो बच्चा बाप की दुकान जास्ती संभालता है तो बाप का दिल उस बच्चे के ऊपर जाता है या नहीं जाता है? बाप भी यहां देखते हैं कि ये बच्चा बहुत पुरुषार्थी है, बहुत मददगार है, बाप की पत गवाने वाला नहीं है, तो बाप उसकी अवस्था को देख करके प्यार करते हैं। बाप समझाते हैं अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो जैसा जैसा बाप श्रीमत देते हैं वैसे चलो। क्या अपनी मनमत पर भी नहीं चलो और मनुष्यों की मत पर भी नहीं चलो। शास्त्रों में गुरुओं ने जो मत दी है उस पर भी मत चलो। क्या गुरु लोग तो दुनिया में अनेक प्रकार के हुए, गुरुओं की संख्या दुनिया में जैसे बढ़ती चली गई दुनिया नीचे गिरती चली गई। इन गुरुओं से दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। जब सदगुरु इस सृष्टि पर आता है तो इस दुनिया का कल्याण हो जाता है। तो बाप सदगुरु कहते हैं, समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है उस पर चलो। श्रेष्ठ मत की यादगार कौन सा शास्त्र है? श्रीमत भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता है। एक ही दुनिया में शास्त्र है जिसके लिए ये गायन है, भगवत गीता माने भगवान की गाई हुई। भगवान ने स्वयं वो गीत गाया है, ज्ञान का गीत। वो सी गाय जो गीता है वो तो यादगार है। क्या जितने भी शास्त्र हुए हैं, चाहे कुरान हो, चाहे सिखों का वो क्या है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब, और चाहे क्रिश्चियंस की बाइबल हो, ये जो भी धर्म शास्त्र हैं, उन धर्म शास्त्रों को क्या उनके धर्म पिताओं ने आकर के लिखा था या सन्मुख आकर के बोला था? तो जैसे वो धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं तो मुख से सामने आकर के बोलते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो सन्मुख आकर के श्रीमत देता है। उस श्रीमत का संकलन बाद में हुआ है मनुष्यों के द्वारा। उसका नाम रख दिया श्रीमद् भगवत गीता। अगर वो गीता पढ़ने से ही दुनिया का कल्याण हुआ होता तो दुनिया में गीता गीता की टीकाएं टिप्पणियां और पुस्तकें तो बढ़ती जा रही, ढेर सारी टीकाएं हो गई, ढेर सारी पुस्तकें हो गई, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है। क्यों नीचे गिरती जा रही है? क्योंकि पढ़ाने वाले जो गुरु लोग हैं वो मनुष्य गुरु है। मनुष्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। जब तक स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए तब तक इस दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। तो पढ़ाई पर अटेंशन दो, ऐसा काम न करो जिससे दूसरों को नफरत आ जाए। क्या काम कैसा करो जिससे जो भी देखने वाले हों, संसर्ग संपर्क में आने वाले हों, उनकी आपसे प्रीति जगे। जैसा बाप समझाते हैं वैसा काम करो। लोक पसंद बनो, बाप पसंद बनो और अपनी आत्मा का भी पसंद बनो, स्वपसंद। आत्मा भी अंदर से खुश बनी रहे कि हमने अच्छा काम किया, कोई काम किया और दिल अंदर खाती रहे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई बुरा काम हो जाता है तो दिल अंदर से खाती तो है ना, तो स्वपसंद भी हो, लोक पसंद भी हो और बाप पसंद भी हो। ऐसा तब होगा जब पढ़ाई पर अटेंशन देंगे। क्रोध करने वाले को कब कोई मान नहीं देंगे। क्या कहा? अगर मान सम्मान चाहते हो तो क्या करना पड़े? क्रोध को बिल्कुल त्यागना पड़े। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहेंगे। ये आदमी शेर जैसी आंखें हो जाए। क्या शेर होता है ना, तो जब देखता है तो कैसे देखता है? शेर तो जंगल का राजा होता है, तो विल पावर उसमें भरी हुई होती है ना कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो याद सिंह बन जाना है, वो तो है हद की लड़ाई। क्या जंगल में जो जानवरों की लड़ाई होती है, जंगल के राजा शेर से जानवरों की लड़ाई होती है, वो तो हद की लड़ाई होती है। दुनिया में भी सारे जंगल में, ये दुनिया भी क्या है, कांटों का जंगल है, इसमें मनुष्यों की जो लड़ाई हो रही है वो भी हद की लड़ाई है। तुमको तो बाप इस युद्ध के मैदान में बैठाते हैं। कौन सा युद्ध का मैदान है? विकारों की लड़ाई। हमारी वो हद की लड़ाई नहीं है। इस युद्ध के मैदान में देखो कितना समय लग गया है। वो लड़ाई तो थोड़े दिन चलती है, लड़ करके फिर हार जीत साबित हो जाती है। ये तो कितने वर्षों से लड़ाई चली आ रही है। कौन सी लड़ाई? क्या नाम दिया इस लड़ाई का? क्या महाभारी? महाभारत लड़ाई तो शास्त्रों में नाम दिया है। बाबा नाम क्या देते हैं? माया की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? माया की लड़ाई। ये है घरगस्त में रहते हुए लड़ाई, घरगस्त के जीवन में रहते हुए विकारों से युद्ध करना, ये है तुम्हारी लड़ाई। बाप कहते हैं आत्मा तमो से अब रजो में आए हो। हे आत्माएं, तुम अब तमो से रजो में आए हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी नंबर वार आए हो। सतो में कोई मुश्किल से पहुंचे हैं कि समय की बात बताई हैं? ये कब की बात है? सन 65 की वाणी है, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था उस समय की बात बताई। कोई कोई ऐसे हैं जो सतो तक पहुंचे हैं, आज उन टाइम पड़ा हुआ है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वो अंत समय का गायन है, पिछाड़ी की अवस्था है। अभी भी वो अतीन्द्रिय सुख किसी को महसूस नहीं हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों से अतीत, माने इंद्रियों से वो सुख भोगा नहीं जाता। जो इंद्रियों का सुख भोगने में लगे होंगे वो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं कर सकेंगे। गुरु शिखर भी पिछाड़ी में आवेगा क्या? गुरु शिखर जो यादगार बना हुआ है वो प्रैक्टिकल चैतन्य में भी कब आवेगा? पिछाड़ी में आवेगा, जब तुम बिल्कुल तत्व प्रधान अवस्था में होंगे, जब तुम्हारी अचल स्थिरियम अवस्था हो जाती है तब तुम अटल अखंड स्वराज्य पा जाते हो। तो पुरुषार्थ कराने वाला बाप तुमको मिला हुआ है। 18.8.65 की वाणी का चौथा पेज। बाप समझाते तो बहुत हैं और यहां तुमको ज्ञान की रोशनी मिलती है क्या? बाप के सन्मुख आने से तुमको ज्ञान की रोशनी मिलती है, औरों के सन्मुख जाते हो तो कुछ न कुछ अज्ञान का संग लग जाता है। बाप के सामने आने से तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि हमको कैसे ऊंचे पद पाना है। इस जन्म को बहुत वैल्यूबल जन्म कहा जाता है। किस जन्म को है? इस जन्म को माना शास्त्रों में भी इस जन्म का गायन है। उसके लिए लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत वैल्यूबल है। क्या कहते हैं? 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं क्या कि मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियों में जाती हो। आम का बीज होगा तो उससे आम का दरख्त निकलेगा, नीम का बीज होगा तो उससे नीम का पेड़ पैदा होगा। आत्मा मनुष्य की है तो वो मनुष्य का ही जन्म लेगी। कीड़े मकोड़ों की आत्मा होगी तो कीड़े मकोड़ों का जन्म लेगी। बीज तो हमेशा बदलता नहीं है, बीज में संस्कार रहते हैं। तो मनुष्य आत्मा तो मनुष्य का ही जन्म लेती है। वास्तव में मनुष्य आत्मा देवता से नीचे गिरते गिरते कीड़े मकोड़ों जैसी जीवन बिताने वाली बन जाती है। जैसे नाली का कीड़ा होता है उसको नाली में से निकाल करके साफ सुथरे धूप के स्थान में रख दो तो मर जाएगा, उसकी जिंदगी ही नाली हो गई। तो आज के मनुष्य भी गुमूत के सुख में रमण करने को ही सबसे ऊंचा सुख मानते, मन नाली के कीड़े बन गए। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको ऊंच पद पाना है, ये बहुत वैल्यूबल जन्म है, अमूल्य जीवन है, यहां तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाना पड़ता है, बनाने के लिए मैं आया हुआ हूं। क्या तुमको? तुमको माने किसको? तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारी मनोबुद्धि जो आत्मा है वो सुबह से लेके शाम तक और रात में सपने में भी कौड़ी को याद करने वाली बन गई। कौड़ी जैसी तुम्हारी जब मनोबुद्धि रूपी आत्मा बन जाती है तो मैं आकर के उसको हीरे जैसा चमकदार बनाता हूं जिसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई होती है। कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, अब तुम पियर घर से ससुर घर में चले जावेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जावेंगे। पुरुषार्थ कर जितना उस पद पाना है सो यहां ही पता पड़ जाएगा। क्या ऐसे नहीं शरीर छोड़ देंगे तो अगले जन्म में पता पड़ेगा? नहीं, परमात्मा बाप आकर ऐसी पढ़ाई तुम्हें पढ़ाते हैं जो इसी जन्म में तुमको पता पड़ जाएगा कि अगले जन्मों में तुमको क्या बनना है। क्यों? कि तुम तो आत्मा रूपी एक्टर हो हैं? कोई एक्टर रंगमंच पर जाकर के पार्ट बजाना शुरू करे और वो अपना पार्ट भूल जाए तो उसको तो बेवकूफ एक्टर कहा जाता है। तो हम आत्मा भी एक्टर हैं, जन्म जन्मांतर हमने ये शरीर रूपी चोले बदले हैं, चोले बदलते 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 अब हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो भगवान बाप आकर के बताते हैं, बच्चे हे मेरे अर्जुन रूपी बच्चे, तुम अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर के तुमको अपने जन्मों का साक्षात्कार बुद्धि से साक्षात्कार कराता हूँ, बंद आंखों का साक्षात्कार नहीं कराता हूँ, अंधश्रद्धा की बात नहीं सिखाता हूँ। तुम अपनी बुद्धि से रियलाइज करेंगे कि अनेक जन्मों में मेरी आत्मा कौन सा पार्ट बजाने वाली है। तो जो जो पुरुषार्थ करके जितना ऊंच पद पावेंगे सो यहां ही पता पड़ जाएगा। क्या ऐसे नहीं शरीर छोड़ करके अगले जन्म में पता पड़ेगा? बाबा कहते हैं तुम घर घर में कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बना सकते हो, तुम अगर पुरुषार्थ करो तो इस ईश्वरीय नॉलेज की हॉस्पिटल घर घर में कुछ खोल सकते हो, जहां मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बन जाएंगी, मनुष्य आत्माएं पतित से पावन भी बनेंगी, सफा पावेंगी और पढ़ाई भी पड़ती है। तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे, एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। तो कॉलेज और हॉस्पिटल ये है, ईश्वरीय हॉस्पिटल है, ये ईश्वरीय कॉलेज है, ये दो मुख्य कॉलेज हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं आमदनी के लिए और हॉस्पिटल होते हैं निरोगी बनने के लिए। तो तुमको जो बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई के पढ़ने से, इस राजयोग को पढ़ने से तुम एवर वेल्दी और एवर हेल्दी बन जाएंगे। वो पढ़ाई भी तो पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए, वो भी समझते हैं कि हम ऊंची पढ़ाई पढ़ लेंगे तो ऊंचा पद पावेंगे और ऊंच पद पाके बहुत मोटी तनख्वाह लेंगे और एवर वेल्दी बन जाएंगे। यहाँ बाप कहते हैं वो तो एक जन्म के लिए बनते हैं, मैं तुमको अनेक जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ हूँ, ये हॉस्पिटल निरोगी बनने के लिए है, यहाँ ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है। क्या सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया जाता है और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, उसके साथ किस तरह योग लगाना है वो यहाँ सिखाया जाता है। फिर चक्कर भी फिराना पड़े, सारी बुद्धि की बात है। क्या ये ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ना, इसमें गहरा जाना, इसमें दात कौन सी मिली हुई है जन्म से? हर एक को बुद्धि की दात मिली हुई है। जो भी आत्माएं जन्म लेकर के आती हैं, उनको अपने अपने तरीके की बुद्धि की दात मिली हुई है, उस बुद्धि के अनुसार उस ज्ञान को और उस योग की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जितना जो करेगा उतना पावेगा। टाइम तो बहुत है, फिर भी याद की यात्रा में पुरुषार्थ करते करते 8 घंटे तक पहुंचना है। क्या कैसी याद की यात्रा? वो ऐसी अटूट अखंड याद की यात्रा हो कि परमात्मा की याद भूले ही नहीं, 8 घंटे तक निरंतर याद बनी रहे। कहते भी हैं एक घड़ी याद ही घड़ी है, जब डंडे पड़ेंगे धर्मराज के, वो स्कूल होता है उसमें मास्टर मारते हैं पीटते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको दंड न मिले तो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, अभी प्यार से पढ़ाई रहे हैं, प्यार से जो पढ़ाई पढ़ लेंगे तो माला में ऊंच पद पा जाएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो जो थर्ड क्लास माला है उसमें पिट पिटा के कोई जिनको आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो उसमें भी रह जाएंगे। तो पिछाड़ी में वो अवस्था आ जाएगी जो सिवाय ज्ञान के और कोई बात बुद्धि में नहीं आवेगी। क्या कहा? क्या कहा तुम्हारी बात का जवाब? जब पिछाड़ी होगी तो वो अवस्था आ जाएगी इस दुनिया की कि सिवाय ज्ञान के और तुम्हारी बुद्धि में कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है अभी से। छोड़ने की बात बाबा कहते नहीं है कि तुम गर्गस्थ को छोड़ दो। कहां भी मुझ हो तो बाबा से पूछना है। बाबा हर एक के सर्कमस्टांसेस को देख करके बतलाते रहते हैं। हर एक की अपनी अपनी बीमारी है क्या का? जैसे जैसे पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, वैसी वैसी हर एक की अपनी अपनी बीमारी होती है। किस्म किस्म के हर एक के सामने विघ्न आते हैं। एक जैसे हर एक के सामने विघ्न आ नहीं सकते, तो उन विघ्नों से पार होना। विघ्न डालने वालों को कैसे कैसे नाम दिए हैं शास्त्रों में, क्या नाम दिए हैं? कंसी, जरासंधी, सुपनखा, पूतना, नाम दिए हैं ना। तो बोला सुपनखा बाबा किसको कहते हैं? जो खुद लड़ाई लड़ने की स्वभाव वाली होती है और दूसरों को भी लड़ाई लड़वाई देती है। सुपनखा ने क्या किया? राम की रावण से लड़ाई लड़वा दी। अब राम ने तो, लक्ष्मण ने तो ऐसा कोई खराब काम उसके साथ नहीं किया था, लेकिन उसने रावण के दरबार में जाकर के ऐसी गुहार लगाई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, नाक कान काट डाले। आया गुस्सा, बस चढ़ाई हो गई। तो बिगन डालने वालों के शास्त्रों में नाम देखो कैसे कैसे दिए हैं, अनेक प्रकार के नाम है। तुम बच्चों को तो अपना पुरुषार्थ करना है, क्या उन कंसियों जरा सिंधियों जैसा पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ का साक्षात्कार सबको होता रहता है। कोई भी ऐसी चलन चलते हैं तो बाप की निंदा कराते हैं तो वो लोग गुरु लोग डर देते हैं, गुरु का निंदक ठहर न पावे। यहाँ तो अकेला गुरु की बात नहीं है, यहाँ तो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीनों की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। कहते हैं कि हमारी निंदा करेंगे, सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो तुम ठौर कैसे पावेंगे? क्या कहा है? कौन सा ठौर? वो तो सन्यासी ऐसे ही कह देते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास तो कोई ठौर है ही नहीं। ठौर बनाने के लिए दूसरों से भीख मांगते रहते हैं। मठाधीश पीठाधीश ऐसे थोड़े ही बन जाते हैं, दूसरों से पैसा ले लेकर के तब मठाधीश बनते हैं, स्थान बनाते हैं, तो वो हमको क्या ठौर देंगे? बाप कहते हैं मैं तुम्हें ठौर देता हूँ। किनको? जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो अंत में मेरे साथ कहाँ जावेंगे? कहाँ जावेंगे हैं? कहाँ जावेंगे हैं? सुखधाम पहले जावेंगे, परमधाम जावेंगे। परमधाम ऊपर होगा या नीचे होगा हैं? नीचे होगा। जो सदगुरु की निंदा करावेंगे वो उस परमधाम में नहीं पहुंचेंगे। मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या? वो शांति की दुनिया इसी सृष्टि पर देखने में आवेगी। तुम बच्चे वहां इकट्ठे होकर के निराकारी स्टेज में टिकेंगे, लेकिन जावेंगे कौन वहां है? जो बाप की कभी भी निंदा कराने वाले न बने हो वो वहां जावेंगे। अगर सदगुरु के निंदक बन गए तो दुनिया के ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे कि जाना चाहते हुए भी नहीं जा सकेंगे। यज्ञ के आदि का सैंपल दे दिया। क्या? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो जो बांधेलियां 7-7 तालों के अंदर रखी गई थी उनको भी मौका मिल गया। जो एक ट्रेन चलनी थी उस ट्रेन से वो निकल गई और पहुंच गई। ऐसे ही अंत में भी कहा एक ही ट्रेन चलेगी, जिनको निकलना होगा निकल जाएंगे। ये तो बाप टीचर सदगुरु तीनों है, कहते हमारी निंदा नहीं कराना, सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो ठौर कैसे पावेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। क्या कहा? कौन से ठौर की बात है? दुनिया तड़प रही होगी और तुम बच्चे आराम से क्या शांति धाम में आनंद कर रहे हो। सैंपल शुरुआत में दिखा दिया। आया समझ में? हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब खून की नदियां बह रही थी तो कराची के बंगले में समंदर के किनारे वो संगठन आराम से रहा पड़ा था। सब प्रकार की सुख शांति उनको महसूस हो रही थी, कोई प्रकार को दुख और शांति नहीं थी। तो समझने की बातें हैं, ये बाप का यज्ञ है। मन से, वाणी से, कर्म इंद्रियों से इस शरीर को हवन करना है। क्या कहा? मन से भी सहन करना पड़े, वाणी से भी सहन करना पड़े। कहते ना, ये तो जैसे मर गया, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और कर्म इंद्रियों से भी सहन करना पड़े। कर्मणा शरीर को हवन करना है, ये ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें शरीर की आहुति देनी पड़े। माना मन को भी हवन करना है, वाचा को भी हवन करना है, और शरीर को भी हवन करना है। सर्विस में ईश्वरीय सेवा में लगाना है। हवन तो सब होंगे, क्या ये 500-700 करोड़ की दुनिया में रह कोई नहीं जाएगा जो इस विनाश की विभीषिका में किसी का हवन न हो। स्वाहा तो सब हो जाएंगे, लेकिन जो स्वेच्छा से होएंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, वो ऊंच पद पा जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हैं? बाप का घर से सबसे बड़ा होगा ना। सुप्रीम बाप है तो उसका घर कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? तो अभी से अपना घर बड़ा बना रहे हो क्या? परम माने बड़ा है। बाप जो घर तैयार कर रहा है, दुनिया में उस घर से बड़ा घर, बड़ा परिवार और दुनिया में कोई नहीं होगा। बाप का परिवार दुनिया में सबसे बड़ा परिवार होगा, जहाँ बेहद की सुख शांति होगी।